पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी ने शेफ की क्लास मिस कर दी और आर्यन ने उसे घर पर कोई काम ना करने को कहा। बाद में सानवी को एक पार्टी में जाना था जिसके लिए उसे कपड़े नहीं मिल रहे थे। उसकी दोस्त कृति, जो एक फैशन डिजाइनर थी, ने उसे एक गाउन दिया। पार्टी में सानवी फ्रेंच ट्रांसलेटर के रूप में गई और फ्रेंच व्यवसायी थी पत्नी मैडम सोफी डेलाक्रुआ के साथ बातचीत की। आर्यन राजवंश भी पार्टी में आया और उसे सानवी के बारे में पता चला। मिस्टर डेलाक्रुआ ने आर्यन और शिव को सानवी से मिलवाया। फिर दोनों को डांस करना पड़ा और बातचीत के दौरान आर्यन ने सानवी के टैलेंट के बारे में जाना। अब आगे, होटल की पार्किंग में जैसे ही एक आलीशान काली गाड़ी रुकी, सबकी नज़रें उसी तरफ उठ गईं। गाड़ी के दरवाजे से पहले ड्राइवर बाहर निकला। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी से रणबीर कपूरिया, एक दमदार और प्रभावशाली बिजनेसमैन, उसके साथ उतरी उसकी वाइफ जेसिका कपूरिया। तभी उन लोगों के पास वही पार्किंग में एक आदमी आता है, उसे रणबीर कपूरिया पूछता है, पार्टी कैसी चल रही है? पार्टी अच्छी चल रही है और अब तो और भी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि उस फ्रेंच बिजनेसमैन के साथ उसकी वाइफ भी आ चुकी थी, जिसे फ्रेंच के अलावा कोई और जुबान समझ नहीं आती थी, और आर्यन राजवंश भी पार्टी में पहुंच चुका है। ये नाम सुनते ही दोनों की नज़रें एक पल को ठहर गईं, जैसे उनके बीच अचानक कोई अनकहा मुकाबला जन्म ले चुका हो। दोनों ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे का हाथ थामा, आंखों में सीधी नज़रें डाली और बिना कुछ कहे अंदर की ओर बढ़ गए। हल्की सी रहस्यमय मुस्कान के साथ रणबीर ने जेसिका का हाथ थामा। दोनों की आंखों में एक अनकही चुनौती चमक रही थी और फिर वे साथ साथ अंदर की ओर बढ़ गए। रणबीर कपूरिया और उसकी वाइफ जेसिका कपूरिया हाथों में हाथ डाले हुए ग्रांड हॉल में प्रवेश करते हैं। दोनों पर सबकी नज़रें टिक जाती हैं। जेसिका का स्टाइल माहौल को और भी रॉयल बना देती है। रणबीर सीधा उस कोने की तरफ बढ़ता है जहां फ्रेंच बिजनेसमैन मिस्टर डेलाक्रुआ अपनी वाइफ सोफी के साथ खड़े हैं। हाउ आर यू मिस्टर डेलाक्रुआ? रणबीर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता है। मिस्टर डेलाक्रुआ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। रणबीर आगे कहते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माय वाइफ जेसिका कपूर। जेसिका हल्की सी स्माइल के साथ उनकी ओर हाथ बढ़ाती है। डेलाक्रुआ भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्लीज मीट माय वाइफ सोफी। सोफी नर्म अंदाज में जेसिका का हाथ थामती है और दोनों महिलाओं के बीच एक विनम्र मुस्कान का आदान प्रदान होता है। ग्रैंड हॉल में रोशनी झिलमिला रही थी। रणबीर कपूरिया और उसकी पत्नी जेसिका हाथों में हाथ डाले सीधे मिस्टर डेलाक्रुआ और उनकी पत्नी सोफी के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं। लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर खड़ा आर्यन राजवंश उन दोनों को देख रहा था। उसकी भौहें तन चुकी थीं, माथे पर शिकन थी। साफ लग रहा था कि रणबीर और जेसिका का आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रणबीर कपूरिया ने बातचीत के बीच अचानक ऊंची आवाज में कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर डेलाक्रुआ, कभी हमें भी आपकी मेजबानी का मौका दीजिए। यहां तो लगता है जैसे आपको हर बार यही राजवंश ही साथ नजर आते हैं। उसके ये शब्द सुनकर आर्यन ने अनकंफर्टेबल होकर गहरी सांस ली। रणबीर ने तिरछी नज़र आर्यन की तरफ डालते हुए कहा, ये नौजवान बिजनेसमैन हर तरह से अच्छा है, मगर कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें महारत सिर्फ मेरी है। इतने सालों बाद रणबीर कपूरिया और आर्यन आमने सामने खड़े थे। हवा में पुरानी दुश्मनी की कड़वाहट साफ छलक रही थी। शिव मेहता ने तुरंत बीच में आते हुए माहौल संभालने की कोशिश की, प्लीज रणबीर, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हों तो अब हमें मिस्टर डेलाक्रुआ के साथ अपनी चर्चा आगे बढ़ाने दो। रणबीर ने ठंडी कटाक्ष भरी नज़र से पहले शिव और फिर आर्यन को देखा। मुस्कान के पीछे छिपा जहर उसके लहजे में उतर आया। वो मिस्टर डेलाक्रुआ की तरफ मुड़ा और बोला, आपके जो इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपने गलत हिस्सेदारों को चुना है। असल में मेरा मतलब है आर्यन राजवंश, अगर हमें एक बार मौका देंगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। उसके लहजे में चुभन थी। रणबीर कपूरिया की हर बात में आर्यन के खिलाफ छिपा जहर साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर डेलाक्रुआ ने शांत मगर ठोस आवाज में कहा, मैंने जो भी हिस्सेदारी चुनी है मुझे उन पर पूरा यकीन है। ये लोग मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। मैं सिर्फ आर्यन को ही नहीं, इनके पूरे खानदान को अच्छी तरह जानता हूँ। बिना शक श्री आर्य राजवंश अपने फील्ड में बहुत कमाल के हैं। ये सुनते ही हॉल का माहौल कुछ पलों के लिए थम सा गया। आसपास खड़े मेहमानों की नजरें रणबीर कपूरिया की तरफ टिक गईं। मिस्टर डेलाक्रुआ ने बात खत्म करते हुए मुस्कुराकर कहा, आप इस पार्टी में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रणबीर कपूरिया ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ छलक रहा था, आंखों में आग थी, मगर भीड़ के सामने उसने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान बनाते हुए कहा, मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर डेलाक्रुआ। लेकिन भीतर ही भीतर रणबीर की आंखों में आर्यन के खिलाफ चलता हुआ जहर साफ दिखाई दे रहा था। जगत राठौर और उनकी वाइफ अनन्या राठौर इंद्र के घर पहुंचते हैं। जैसे ही इंद्र की नज़र छोटे जय पर पड़ती है वो बिना रुके उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मेरा राजकुमार, कहाँ था तू? इंद्र ढेर सारा प्यार करते हुए कहता है। जय खिलखिलाकर हंस पड़ता है। जगत मुस्कुराकर छेड़ते हुए बोला, तुम्हें तो किसी की याद ही नहीं आती, मगर जय तुम्हें बहुत याद कर रहा था। अंदर से आवाज़ आई, वो इंद्र का छोटा भाई था जो पास के पेंट हाउस में रहता था। भैया अब उठाओ भी, इतना लाड़ प्यार करोगे तो बिगड़ जाएगा। सभी हंस पड़े। अनन्या आगे बढ़कर बोली, अच्छा मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, और वो किचन की तरफ चली गई। असल में इंद्र अकेला ही उस अपार्टमेंट में रहता था। रोज का खाना वो खुद बनाता था, बस सफाई के लिए एक मेड आती थी। अनन्या को मालूम था कि यहाँ कॉफी भी उसी को बनानी होगी, इसलिए बिना झिझक वो काम संभाल लेती है। जय को अपने मामू आर्यन राजवंश से बहुत प्यार था, तो वही अपने चाचू इंदिरा राठौर के साथ भी उसकी बहुत अटैचमेंट थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आर्यन एक जिम्मेदार और गंभीर इंसान था, जबकि इंद्र का अपना म्यूजिक रूप था। उसे जिम्मेदारियों से ज्यादा आजादी और दुनिया घूमना पसंद था, लेकिन जय दोनों को ही दिल से चाहता था। उस वक्त वो इंद्र के साथ नकली लड़ाई कर रहा था। जय छोटे छोटे मुक्के मारता और इंद्र हर बार हारने का नाटक करता। अचानक जय कूद कर बोला, ठीक है मैं जीत गया, अब मैं आपका गिटार भी ले जाऊंगा। इंद्र हंसते हुए बोला, ठीक है मेरे शहजादे ले जाओ, चाहे तुम मेरा सामान तोड़ भी दो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। इतने में अनन्या कॉफी लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसने कप टेबल पर रखते हुए इंद्र को हल्की डांट भरे लहजे में कहा, इंद्र अब तुम्हें भी काम के प्रति सीरियस हो जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि म्यूजिक तुम्हारा पैशन है, लेकिन यह बिजनेस सिर्फ जगत का अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी हिस्सा है इसमें। तुम्हें संभालना चाहिए, ऑफिस आना चाहिए। जगत ने भी सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, अनन्या से ही कह रही है इंद्र, पैशन अपनी जगह है मगर जिम्मेदारियां भी तो अपनी जगह होती हैं। इंद्र एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी भी। सानवी और सोफी आपस में खूब घुल मिल गईं। वैसे भी हॉल में फ्रेंच बोलने वाला कोई नहीं था, और सोफी को अगर किसी से बात करनी होती तो सानवी ही उसका सहारा बनती। दोनों की हंसी मजाक और बातें सबका ध्यान खींच रही थी। जैसे ही रात काफी गहरी हो गई, आर्यन ने मेजबानों की तरफ मुस्कुराकर कहा, ठीक है अब हम चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। इस शानदार पार्टी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त सोफी और सोफी दोनों मिस्टर डेलाक्रुआ के पास ही खड़ी थीं। मिस्टर डेलाक्रुआ ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं नहीं मिस्टर आर्यन, हम आपके घर पर कॉफी पीना चाहेंगे। आपका लॉन बहुत खूबसूरत है, हम हमेशा आपको आपके घर को मिस करते हैं। वैसे भी आज रात की हमारी फ्लाइट है, तो हम आपके साथ ही चलते हैं, कॉफी पीकर सीधा बहन से निकल जाएंगे। सानवी बिना सोचे समझे हल्के उत्साह से बोल पड़ी, सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत है। असल में उसके कहने का कोई खास मतलब नहीं था, उसने बस कैजुअली कह दिया, लेकिन आर्यन ने उसकी तरफ हैरानी से देखा।